आगे देखिए 45 से 60, टॉपिक लिखिए जन्नत में ले जाने से पहले दिल धुलेंगे। मुराद क्या है? दिलों से कीने निकाल दीजिए। फरमाए इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन। बेशक मुत्तकी लोग बागों और चश्मों में होंगे, इनके दिलों में जो कुछ रंजश और कीना था हम सब कुछ निकाल देंगे। वो भाई भाई बने हुए एक दूसरे के आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे। सास बहू अगर एक ही जन्नत में पहुंच गईं तो एक दूसरे को देख के कुड़ेंगी, ये इधर भी आ गई, ये अम्मा बेगम इधर भी बैठी हुई हैं, तो फिर तो जन्नत जन्नत ना रही। और अगर अपने ही शौहर जन्नत में दिख गए, लो वहाँ तो दिन गिनती के पूरे किए थे, 4 दिन की दुनिया आप चलते हैं, तो क्या होगा बताइए? वहाँ दिल धुल जाएंगे। जन्नत में ले जाने से पहले आखिरी मुकाम है पुलसरात का कंतरा, वहाँ रिश्तों का हिसाब होगा। सारा मैदान मख्शर आप घूम के गुजर गए, सारी क्लियरेंसेस मिल गईं, एयरपोर्ट के मराहल जहन में रखिए, आप बिल्कुल जहाज़ के दरवाजे पे पहुंच गए, यहाँ हकूकुल इबाद के मामले होंगे। आप बताओ उस दिन क्या किया था? उस दिन बिला वजह की गुस्सा किया था, उस दिन क्यों डांटा था, उस दिन क्यों गुस्सा किया था? आज औरत पे बड़ा जुल्म होता है, सारा दिन चूल्हे के आगे खड़ी होती, खाने पकाती है, और शाम को सिर्फ नमक तेज़ हो गया इस बात पर डांट खाती है। आज की औरत जिसके ऊपर अगर आप चंद जुमले नहीं कई किताबें लिख सकें तो कम है। किसी ने कहा कि आज के दौर की वलिया तो औरत है। कैसे? कहा तुम्हारे अपने घर में है वलीउल्लाह, सबसे पहले खुद उठती है, और अगर आप ना उठें तो सबका रोज़ा गया, और सारा दिन सब सुलवाते रहेंगे कि आप नहीं उठी थी तो सहरी नहीं पकी। सबको पकाती उनकी मर्जी के, किसी के पराठे, किसी के हलवे, किसी के मांडे, और खुद आखिर में 2 लुकमे कब खाती? जब अजानें हो रही हैं, और बच्चों की बची हुई चाय पानी पी के रोज़ा रखती है। फिर सुबह सारा दिन आपके घर को देखती, आपकी सफाइयाँ करवाती, और बच्चों के लिए नाश्ते बनाती, स्कूल से आने पे उनको टेक केयर करती, फिर ट्यूशन पे भेजती, थोड़ा सा सस्ताने भी लेट जाए तो उसको कोई सोने ना दे, और फिर असर के बाद से वो किचन में जाकर आपके लिए इफ्तारियाँ बनाती। और उसको क्या मिलता है? जब अजान हो जाती है तो कोई ज़बरदस्ती उसके मुँह में खजूर डाल दे, वो आपके बर्तन समेट रही होती है, आप मस्जिद से नमाज़ पढ़ के आते हैं, उसकी नमाज़ कज़ा हो जाती, आप तरावी पढ़कर अपना खाना हजम करके आते, वो औरत अभी किचन साफ करके नहीं निकली। मुझे बताइए, औरत के बगैर दुनिया चलती है? बल्कि लोग कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता, हालांकि असल बात क्या है? औरत के बगैर कोई घर नहीं होता। ये उनसे पूछिए जिनकी औरतें चली गईं। अक्सर मर्दों को औरतों की और बीवियों की कदर कब आती है? जब वो नहीं रहती। कि इतना कुछ करती थी एक औरत, माँ होने के नाते हर मर्ज की दवा नहीं है। घर में अंदर घुसते ही सबसे पहले बच्चे क्या पूछते हैं? माम, अम्मी किधर है? अच्छा हैं, चलो शुक्र। और मियाँ साहब भी आते ही आवाज़ क्या लगाते हैं? किधर हो? चलो ठीक है, फिर चाहे बात भी ना करें, लेकिन घर में बैठी हो, शुक्र है, अपनी जगह पर लगी हुई है काम पर, फिर जाके सो जाएं, काम करें, कंप्यूटर पे हो, फोन पे हो, जो भी है। और अगर बेगम घर में ना मिली तो अल्लाह की पनाह। तो मेरे पास एक किसी भी जगह थी तो एक सिस्टर आई, बड़ी दुखी, कहती मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। मैंने कहा क्या मुश्किल है आपकी? कहती मेरा मियाँ कहता है जब मैं घर आऊँ तो तुम घर में मौजूद हो। अच्छा, तो मैंने कहा आप क्या चाहती हैं? आपका मियाँ आपको ये कहे कि मैं घर आऊँ तो मुझे तुम्हारी शक्ल ना दिखे, तो मुझे इतनी बुरी लगती हो? मैंने कहा ये तो खुशी की बात है, आपका मियाँ आपको घर आते ही देखना चाहता है, आप इसको बुरा क्यों समझती हैं? कहती नहीं, फिर मैं कहीं जा नहीं सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। खैर बहरहाल, जो बात बात में होनी थी वो तो हुई, लेकिन शुक्र कीजिए कि आपके मर्द चाहते हैं कि आप उनको घर में दिखें। मोहब्बत होती है तभी तो आपको चाहते हैं। बच्चे क्या चाहते हैं? मॉम घर में हो। लेकिन असल बात क्या कि हमने इतना ज़्यादा पैम्पर कर दिया होता है और इतना अपना यूज टू कर दिया होता है कि आज एक औरत हफ्ते में 5 दिन जॉब के लिए जाए कोई नहीं रोकता, सुबह से शाम तक जाए कोई नहीं रोकता, फिर बच्चे पता नहीं कौन पालता, फिर दादियों को बुरा नहीं लगता कि ये बहू खुद सारा दिन जॉब पे चली जाती है और बच्चे मेरे पे डालती है, और अगर वही औरत 2-3 घंटे के लिए ज़रा घर से निकले कि मैं कुरान सुनाऊँ, मैं थोड़ा सा सस्ता लूँ, तो हर एक की नज़रें उस पर हैं। इस औरत को ये हक दीजिए, और आप सब अपना ये हक लीजिए। मैंने ये हक लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ने फिर मेरे साथ वालों के दिल में नरमी डाल दी हुई है। मुझे जितना यकीन है ना इस हक के लेने का, मुझे ज़िंदगी में किसी बात के लेने का इतना यकीन नहीं। मैं अपने ससुराल से भी यह हक ले सकती हूँ और लिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने शौहर से भी लिया हुआ है, मैंने अपने भाई बहनों से भी लिया हुआ है। उनकी शादी और मेरी कमिटमेंटों में नहीं जाऊँगी, मैंने ये हक मनवा लिया। मैंने उनको बता दिया कि समथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट देन यू, ये आप भी कीजिए। अपने सिल्म के सफ़र की, अपने इस अल्लाह की कुर्बत की मार्फत का हक लेना आपका फ़र्ज़ है। अक्सर सिस्टर्स मुझे सुनाती हैं, बस क्या करें घर वाले पसंद नहीं करते, फिर मैं उनको क्या कहती हूँ, बस मैं अभी आई। अब नहीं अभी आई तो फिर वो नाराज़ हैं और शर्मिंदा शर्मिंदा आती हैं, बस बस थोड़ी देर में आती हूँ, अभी आ जाऊँगी। अच्छा नहीं बताती नहीं हूँ। मैंने कहा नहीं, गलत करती हैं आप। अब एक दिन बैठे आराम से, जिसको भी एतराज़ है, अगर मैं सास है तो भी, और इज़्ज़त और प्यार और मोहब्बत के साथ, और शौहर साहब है उनको भी, मुझे ये बताइए कि मैं आपका हक कौन सा नहीं देती। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं सारे घर के काम धंधा जो कुछ मुझे अल्लाह ने दिया मैं करूँगी, इज़्ज़त से करूँगी, आपकी खिदमत भी करूँगी, लेकिन आप मुझे इससे नहीं रोक सकते, ये मेरा हक है। आप यकीन कीजिए, जिस दिन आपको ये यकीन हो गया, आपका रास्ता कोई नहीं रोकेगा। तेज़ आती गाड़ी को तो दूसरे भी रास्ता दे देते हैं, ये हम शेकी होते हैं, माजरत खाना, डिफेंसिव, नहीं मैं जा रही हूँ, मैं अहम है, मैं रोज़ जाऊँगी, ये भी बता दूँ। और देखिए देर होगी, अगर मुझे आने में देर होगी तो आप पकौड़ों वाली कड़ाही चूल्हे पर रख दीजिएगा, मैं आकर उसमें गरम गरम पकौड़े बना लूँगी। आप यहाँ से क्यों शर्मिंदा उठ के जाएँ? आप कोई चोरी करके गए हैं? आप कोई जुल्म करके गए? आप जो खैर यहाँ से लेके जा रहे हैं वो किधर जा रही है? तो अपना हक लीजिए, लेकिन ज़ुबान प्यार से मोहब्बत से। ये जब हमारी ज़ुबान तलख और आगे से फिर दलाइल और बैसे और रोना धोना, ये गलत है। बाकी वक्त बेस्ट गुजारें, ये वो खुद आपको देंगे कि जाएं बेगम और जाएं मामा और बहू, आप जाइए और बेटी आप जाइए, आपका हक है, यू डिज़र्व दिस, कि आप कुछ वक्त अपने आप को दें। बहरहाल अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए। फिर आगे आयत नंबर 48 से जन्नत की बातें पढ़ते पढ़ते बीच में अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया, जिसको हम आप अपने लिए लेंगे। ला यमस्सुहुम फीहा नसबुम वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन, ना तो वहाँ इन्हें कोई तकलीफ छू सकती है और ना वहाँ से कभी निकाले जाएंगे। ज़रा आँखें बंद करें, तसव्वुर में ख़ुद को जन्नत में ले जाएं, कोई तकलीफ़ नहीं होगी वहाँ, आपको कोई दर्द नहीं होगा। अगर बीमारी के दिनों में तकलीफ़ होती है, नहीं होगी। बच्चे की पैदाइश की तकलीफ़ नहीं होगी। आप देखिए औरत कितने दर्द सहती है, माँ बनने के मरहले ही शुरू से आखिर तक देखिए, कोई आसान काम है? जन्नत में कोई तकलीफ़ नहीं है। एक मैंने स्टोरी कहीं शेयर की थी, कहीं ना कहीं होगी, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था, उसमें एक लड़की रहती थी और ससुराल में कुछ ना कुछ कानों में बातें तो होती रहती हैं। तो मर्द बेचारा रात को आता था तो कभी माँ ने कान में कहना कर दी कुछ नहीं, सुती रहंदी बैठी रहंदी, इसी तरह कभी बहनों ने कुछ कहना ये कर देना। अब उसका एक बच्चा भी था, एक साल का या कुछ ऐसे छोटा बच्चा था, तो क्या किस्सा मुझसे कि वो मर्द को बाहर खुद उस औरत से कोई गिला नहीं था, वो खुश थे मियाँ बीवी, लेकिन ऊपर वालों की बातों से क्या हुआ कि एक दिन उसने गुस्से में उसको कहा कि चली जाओ अपने में, क्या उसने कहा अच्छा अब आपने कह दिया तो मैं जा रही हूँ, और ये पकड़ें अपना बच्चा संभालें, बच्चा भी छोड़ गई। बच्चा मर्द को दे देना चाहिए, याद रखिए, संभालें अपना बच्चा खुद, वो बच्चा आपको कभी भी जवान नहीं रहने देगा, वो आपको बूढ़ा कर देगा। खैर किस्सा मुख्तसर, वो चली गई। अब वो आया था काम से, आम तौर पे क्या होता था, आता था खाना पकता था, ये है वो है दिस एंड दैट, कुछ भी नहीं, बच्चा रो रहा है। ऑर्डर किया मुझे कुछ खाना मिल जाए, होटल से कुछ खाना मंगाया, खाना पड़ा, बच्चा रोने लग गया, उसको बॉटल बना के दूध की दी और उसके बाद फिर वो उसको खिला रहा है सुला रहा है, पैंपर गंदा कर दिया, उसको साफ़ किया, रो रो करके बच्चा सोया। कहा अच्छा चलो मैं खाना खाऊँ, देखा तो खाना ठंडा था, खाना गर्म करने के लिए किचन में गया, उसको चीज़ें ही नहीं पता चल रही किधर है। सिर्फ 3-4 घंटे गुजरे, आधी रात फ़ोन करता है, बेगम मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, मुझे इन 4 घंटों में पता चल गया तुम क्या करती हो, और आज के बाद मैं ये जुमला कभी ना बोलूँगा कि तुम सारा दिन करती क्या हो। ये अक्सर औरतों को जुमला सुनना पड़ता है, तो इस तरह के झटकों से मर्दों की आंखें खुल जाती हैं। औरत कोई आया थोड़ी है, इज्जत का रिश्ता है। देखिए अल्लाह के नबी कैसे बीवियों को देखते थे, बेटियों को देखें, हम तो इस वक्त सिर्फ मुआशरे में औरतों के मुकाम को ही देख लें, ऐसे लगता है कि एक लो लेवल की खातून है, हालांकि औरत तो आपकी नस्लों को बनाती है। तो जन्नत में जाकर अल्लाह क्या कहते हैं, ना तो इन्हें वहाँ कोई तकलीफ छू सकती है, ना वहाँ से कभी निकाले जाएंगे। मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बहुत बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान हूँ। कितनी प्यारी खबर है, खुशी हुई सुन के, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही मेरे अजाब भी नहायत दर्दनाक हैं, बोलिए अस्तग़फिरुल्लाह। यानी अल्लाह की दोनों सिफात एक्सट्रीम पे हैं। इन इब्राहिम के मेहमानों का हाल भी सुना दो कि जब उन्होंने इनके पास आकर सलाम कहा तो उन्होंने कहा हमको तो डर लगता है। उन्होंने कहा डरो नहीं, हम तुझे एक साहिब इल्म बेटे की बिशारत देते हैं। कहा क्या, इस बुढ़ापे के आ जाने के बाद तुम मुझे खुशखबरी देते हो? ये खुशखबरी तुम कैसे दे रहे हो? क्योंकि उनकी नज़र असबाब पे थी और अल्लाह की नज़र अपनी कुदरत पे है। उन्होंने कहा हम आपको बिल्कुल सच्ची खुशखबरी सुनाते हैं, आप मायूस लोगों में ना हो जाइए। कहा अपने रब की रहमत से ना उम्मीद तो सिर्फ गुमराह और बहके हुए लोग ही होते हैं। यहाँ रुक जाऊँ, बाद में समझ ना आएगा। हर वो कपल जोड़ा जो अभी तक औलाद की नेमत से महरूम है, इस आयत को पढ़ लें। अल्लाह की रहमत से सिर्फ मायूस लोग ही दूर रहते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक इस वक्त 80 से 90 साल, बल्कि बाद जगह तो आता कि 100 साल के करीब थी, और अल्लाह बेटे की खुशखबरियाँ दे रहा है। क्योंकि इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अय्यन यकूल लहू कुन फयकून। वो साहिब कुन फयकून है, अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद ना हो। पूछा कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों तुम्हारा ऐसा क्या अहम काम है? उन्होंने जवाब दिया मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए। कौन सी? लूत की कौम। मगर खानदाने लूत के हम इन सब को ज़रूर बचा लेंगे, सिवाय इस लूत की बीवी के, हमने इसे पीछे रहने वालों और रुकने वालों में मुकर्रर कर दिया। जब भेजे हुए फरिश्ते आले लूत के पास पहुँचे, क्या पता चला? हज़रत लूत की शादी गैर ख़ानदान में हुई थी और ये औरत निभा ना कर सकी लूत के घर से। आप देखिए कि हर नबी की ज़िंदगी में हमारे लिए मुख्तलिफ सबक है। इस औरत की हमदर्दियाँ अपनी कौम से थी, यानी बाकी अम्बिया कराम जो थे ना वो अपने ही कौम में थे, लेकिन हज़रत लूत ने पहले हिजरत की थी क्योंकि इब्राहिम के भतीजे थे, एक ही जगह थे, एक ही ख़ानदान था। अल्लाह ने इनको ऐसे ही, जैसे आप में से कोई जोहरा बात है तो आपकी पोस्टिंग कोई मियाँ वाली कर दे कि आप वहाँ जाकर काम करें, ऐसी मिसाल है सिर्फ। तो हज़रत लूत वहाँ गए, वो उनके अपनी बिरादरी नहीं थी, वहाँ की एक औरत से शादी की। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है औरतों के नाते से, गैर ख़ानदान या गैर बिरादरी को कबूल नहीं कर पाती या लोग उनको कबूल नहीं करते। औरत पे एक और जुल्म मैंने बहुत पढ़े लिखे लोगों में देखा। एक औरत है, वो कहती है मेरी सास की चार बहुएं हैं, सबसे उसको प्यार है मुझसे नहीं। मैंने कहा ये तो बाकियों को भी लगता ही होगा, किसी को अपनी सास के प्यार का यकीन आज तक नहीं दुनिया में आया और ना आएगा। आप में से किस किस को यकीन है उनकी सास उनसे प्यार करती हैं? अब मैं इसका ज़रा दूसरा सवाल करूं, आप में से किसको अपनी सास से प्यार है? आज आपको मैं एक वजह बताऊं सास से प्यार करने की। सास से प्यार करने की सिर्फ एक वजह कि वो आपके शौहर की माँ है। उस औरत ने पेट में रख के, पाल पोस के, दूध पिला के, रातों को जाग के, दिन में उसको स्कूलों में भेज के, एक बच्चे को एक तवाना मर्द बनाकर, डिग्री होल्डर डॉक्टर साहब बनाकर आपके हाथ में दे दिया। क्या इससे बड़ी और कोई वजह चाहिए? बस इस वजह से उस औरत से प्यार कीजिए। बीमार रहती है इसलिए चिड़चिड़ी है, दवाइयाँ बहुत खाती है इसलिए ताने बहुत देती है। सब्र कीजिए, बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि इसके बगैर घर चल नहीं सकते। एक सिस्टर थी और कहने लगी मैं अपनी सास को कभी माफ़ नहीं कर सकती। मैंने कहा जिंदा है? कहती नहीं, फौत हो चुकी हैं, वैसे अल्लाह उन पर रहम कर दे। मैंने कहा उन पर रहम कब होगा? जब आप उन पर रहम करेंगी उनको माफ़ कर दीजिए। मैंने कहा हुआ क्या? कहती जिस दिन मैं दुल्हन बन के आई उसी दिन उन्होंने मेरे से काम शुरू करा दिया, पहले ही दिन से उन्होंने बस मेरे साथ ये बैर रखा। तो जो मैं बात सुना रही थी एक औरत की कि मेरी सास को सारी बहुओं से प्यार है मेरे से नहीं, तो मैंने कहा वजह, कोई वजह होगी? कहती इसलिए कि मैं गैर बिरादरी से हूँ। वो जो बाकी तीन है, एक भाई की बेटी है, एक बहन की बेटी है, एक फलां की है, मैं गैर ख़ानदान से हूँ। तो ये भी कोई बात है करने वाली? देखिए क्या मैं और आप सिर्फ दुनिया में ये जंगे लड़के चले जाएंगे? हक और बातिल की जंग और इस्लाम का दिफा तो बहुत पीछे रह जाता है जब हमारी अपनी जाती ज़िंदगी की उलझने नहीं ख़त्म होती और 90% घरों में सिर्फ ये बातें हो रही होती हैं। इज़ इट ट्रू और नॉट? फ़ोन टॉक्स, गुफ्तगु, गीबतें, शादी मेन हॉल, इसी हॉल में पता नहीं कितनी गीबतें होती होंगी हर शादी के मौके पर राउंड टेबल्स के गिर्द। वो तो एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके नतीजे में पाकिस्तान बन गया, हमारी गोलमेज कॉन्फ्रेंसें जो शादियों में होती हैं उसके नतीजे में क्या निकलता है? गीबतें और बुराइयाँ। इन सब चीज़ों से ऊपर निकलिए फिर आपको ये जन्नत मिलेगी जिसका इतना प्यारा वादा इधर हमने देखा। और सुनिए ज़रा जन्नत में जाने से पहले क्या होगा। बुखारी की रिवायत है 65:35, आपने फरमाया मोमिन जहन्नम से निजात पाकर जन्नत दोजख के दरमियान के पुल पर रोक लिए जाएंगे। जो नाचाकियाँ और जुल्म आपस में थे इनका अदला बदला हो जाएगा और पाक दिल साफ सीना होकर जन्नत में जाएंगे। अल्लाह जन्नत में गंदे दिलों वालों को नहीं ले जाएगा, उसका तो हुसन ही ख़त्म हो जाएगा। तो फिर आप और मैं क्या ये काम यहाँ नहीं कर सकते? आप यहाँ दिल साफ कीजिए, आपका वहाँ मामला ठीक हो जाएगा। और यकीन करें, अगर आपको लगता है औरत होने के नाते हम मज़लूम है, आज ज़्यादा बातें सास पे पता नहीं क्यों होती जा रही हैं, अल्लाह ही रहम कर दे, क्योंकि हमारा अक्सर रूप ही या सास का होता है या बहू का होता है। लेकिन यकीन कीजिए, कम्युनिकेशन कर लें, लाड से गले में बाजू डाल दें। सास ने ताना दिया, आपके आंसू निकले, जाके उसी के गले में लग के रोएं, उसी को कि अम्मा मेरे आंसू साफ करो, मेरा दिल दुखा है आपकी बात से, अगली दफ़ा नहीं बोलेंगी अम्मा। और उस अम्मा को भी ज़रा इसके ऊपर काबू में मदद कीजिए। किसी की गलत बात सुन के, गाली सुन के, बुरी बात सुन के, सुनते ही जाना अगले को और शेयर करते हैं कि और बोलो, नहीं, जालिम और मज़लूम की मदद करो। और याद रखिए, जन्नत में ऐसा दिल दुखाने वाला कोई मामला ना होगा। अहले जन्नत की नेमतें क्या होंगी? बागात और नहरें होंगी, हसद और बुग़्ज़ और अदावत से पाक होंगे, सलामती और अमन होगा, तकलीफ़ों से आज़ाद होंगे। और सबसे प्यारी नेमत जन्नत की क्या है? हम फीहा खालिदुन, हमेशा उसमें रहेंगे, चार दिन की चांदनी नहीं है। और शादीशुदा खवातीन ख़ासतौर पर न्यूली वेड कब खुश होती हैं? जब सास कहीं रहने चली जाती हैं। और कब परेशान होती है, उनकी सांस कब उखड़ती है? जब सास आ रही होती है, मेरी सास आ रही, मेरी सास आ रही, सब्र सब्र, सांस आ रही है। हमारे यहाँ खुशी का वही वक्त होता है जब सब चले जाएँ तो हम खुश हैं। देखिए, अपना वजूद दूसरों के लिए खुशगवार बनाइए कि लोग आपकी मौजूदगी में खुश हों, ना कि आपके जाने की दुआएं करें। क्या सीखा हमने? जन्नत के नज़ारे हसीन हैं, पाने की कोशिश करूंगी, उम्मीद रखूंगी कि मुझे भी अल्लाह ताला ये सारी नेमतें अता फरमाएगा, और चूँकि जन्नत में फरिश्ते भी सलाम करेंगे तो मैं भी सलाम करूँगी एक दूसरे को, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होंगी, अल्लाह से माफ़ी और रहम की उम्मीद रखूँगी, और मुत्तकी दुनिया और आखरत में सलामती और अमन से होंगे तो मैं तकवा इख्तियार करूँगी इंशाल्लाह। आगे देखिए, 61 से 79 टॉपिक लिखिए, नफ्स परस्ती के नशे ने अंधा कर दिया। असल में ये कौम लूत की मस्तियों की बात है जो उनके ऊपर थी। फलम माजा आल लूत इनिल मुरसलून, जब भेजे हुए फरिश्ते आले लूत के पास पहुँचे तो उन्होंने, यानी लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम लोग तो कुछ अनजान से मालूम हो रहे हो। उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि हम तेरे पास वो चीज़ लाए हैं जिसमें ये लोग शक शुबा कर रहे थे। हम तेरे पास सरी हक लाए हैं और हैं भी बिल्कुल सच्चे। अब तो अपने ख़ानदान समेत इस रात के किसी हिस्से में चल दे और आप इनके पीछे रहना, और ख़बरदार तुम में से पीछे मुड़कर भी कोई न देखे, और जहाँ का तुम्हें हुक्म किया जा रहा है वहाँ चले जाना। हमने इसकी तरफ इस बात का फ़ैसला कर दिया कि सुबह होते होते इन लोगों की जड़ें काट दी जाएंगी और शहर वाले खुशियाँ मनाते हुए आए। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ये लोग मेरे मेहमान हैं, तुम मुझे रुस्वा न करो, अल्लाह से डरो और मुझे रुस्वा न करो। वो बोले, क्या हमने तुझे दुनिया भर की ठेकेदारी से मना नहीं कर रखा? लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हें करना ही है तो ये मेरी बच्चियाँ मौजूद हैं, तेरी उम्र की कसम, वो तो अपनी बदमस्ती में सरगर्दां थे। बस सूरज निकलते निकलते इन्हें एक बड़े ज़ोर की आवाज़ ने पकड़ लिया। मिलाखिर हमने इस शहर को ऊपर तले कर दिया और इन लोगों पर कंकर वाले पत्थर बरसाए। बिलाशुबा बसीरत वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। ये बस्ती राह पर है जो बराबर चलती रहती, यानी आम गुजरगाह पर थी, और इसमें ईमानदारों के लिए बड़ी निशानी है। एक बस्ती के रहने वाले भी बड़े जालिम थे जिनसे आखिर हमने इंतकाम ले ही लिया। ये दोनों शहर खुले आम रास्ते पर हैं। कौम लूत की मस्तियों का जिक्र है। आपने मैंने क्या सीखा? दीनदार लोगों को तंग नहीं करना, हक का साथ देना है, अल्लाह से डरना है, अल्लाह के अहकामात की पैरवी भी करनी है, अल्लाह की हदों में रहना है, और अल्लाह की निशानियों से इबरत हासिल करनी है, और ख़ास तौर पे अपने इर्द गिर्द वालों को इस बुरी तकलीफ़ और इस बुरे मर्ज से दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करनी है, जिसमें आज नस्लों की नस्लें डूबने लगीं। फिर आगे देखिए, आयत 80 से 99, कौम हिजर का जिक्र है जिसके नाम पर यह सूरत है। फस फह सफ हल जमील, बस दरगुजर कीजिए, खूबसूरत दरगुजर करना, ये है रिश्तों को जोड़ने वाला काम। देखिए, फॉरगिव फॉरगेट तो सूरह यूसुफ में बड़ा प्यारा सीख गए, लेकिन ज़िंदगी का एक और असूल भी आपको मुझे इस हिस्से से दिखेगा कि बहुत सारी चीज़ों को ओवरलुक करना ही पड़ता है। जाने दीजिए, कुछ औरतों के दुखी रहने की एक और वजह भी होती है, हर बात को महसूस बहुत करती हैं। उसने मुझे ये कह दिया, वो मुझे सुना गई, इतनी अकलमंद है कि नंद के दिल की बात भी जान जाती हैं कि वो बेचारी को अपनी बात करती है, कहती मुझे सुना गई। मैं कहती इतने इंटेलेक्चुअल लोग अगर हुकूमत में आ जाए तो हमारा मुल्क ठीक हो जाए। खवातीन इतनी अकलमंद होती हैं, आंख के इशारे को समझ जाती है, ये मुझे सुना के गई। जैसे एक सिस्टर थी, खुद मुझसे उन्होंने बात की, वल्लाह ही ये बातें मैं जो आपको सुना रही हूँ मैं ऐसे नहीं बात करती, कहीं ना कहीं वो बात हुई होती है। नई नई शादी हुई एक लड़की की, अपने मियाँ के साथ, जैसे हमारा कल्चर है पंजाब का, आपको भी पता है कि फिर सारे रिश्तेदार दावतें करते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं। खैर वो लड़की जब मैं के रहने आई तो आज उस मामू के घर दावत, तो कल पप्पी के, तो खाला के, तो एक खाला या पप्पी या कोई भी किसी, यानी वो रिश्ते जिनसे पहले दिल में खुद ही बुगज था और माँ को भी लगता था कि ये मेरी ज़िंदगी में डोड़े डालते हैं, तो फुफ्फो की बेटी ने या पप्पी ने किसी ने उनकी दावत कर दी, ये उधर गई। और अब जो मुझे सुना रही, कहती चटनी में उसने कोई जादू करके डाला हुआ था, मेरे मियाँ को मेरे खिलाफ करने के लिए उसने चटनी में कोई तवीज़ खोले थे। मैंने कहा आपको कैसे लगा? कहती बार बार उसको कह रही थी चटनी खाओ चटनी खाओ। यकीन कीजिए इस बात में मुबालगा हो सकता है लेकिन ये बात सच है, वो मेरे मियाँ को मेरे अब खिलाफ करेंगी और उसको चटनी में कुछ पड़ पुड़ के खिलाती हैं। मुझे बताइए ऐसे रिश्तों में मोहब्बत बनेगी? और वो वजह क्या कि वो ददयाली ख़ानदान था, और वो इसलिए कि माँ से नहीं बनी था, वो बेटी का घर कैसे खुश होंगी। कई लोगों का गुमान होता है कि हमारी नंदें यानी बच्चियों की फूफियाँ और हमारी सासें जो बच्चों बेचारों की दादी दादा है, वो कहते हैं जी इनको ये वो खुश नहीं देखना चाहते। देखिए आपके साथ वो बुरे हो सकते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर, अपने पोते पोतियों के साथ कोई बुरा नहीं होगा। ये निकाल दीजिए दिलों से, ये कोड होता है, ये दिलों में जब पड़ता है ना तो फिर सच नहीं दिल में आता। अपने आप को यहाँ बैठ कर यकीन दिलाएं, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैंने खुशी के साथ जीना है और खुश रखना है और खुश रहना है। फिर चलिए किस्सा शुरू होता है आयत 80 से, वलकद कज़्ज़ब असहाबुल हिजर अल-मुरसलीन, और हिजर वालों ने भी रसूलों को झुठलाया और हमने अपनी निशानियां भी अता फरमाई लेकिन वो तो इससे मुंह ही फेरते रहे। ये लोग पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे बेखौफ होकर, आखिर इन्हें भी सुबह होते होते चिंगार ने आ दबोचा, बस इनकी किसी तदबीर और अमल ने इनको कोई फ़ायदा ना दिया। सारी तरक्कियां हाथ में पड़ी रह जाती हैं जब अल्लाह ताला की पकड़ आती है। हमने आसमान और ज़मीन को और इनके दरमियान की सब चीज़ों को हक के साथ पैदा किया और क़्यामत ज़रूर आने वाली है, बस तू हुस्न खूबी और अच्छाई से दरगुजर कर ले, यकीनन तेरा परवरदिगार ही पैदा करने वाला और जानने वाला है। यकीनन हमने 7 आयतें दे रखी हैं कि वो दोहराई जाती हैं और अजीम कुरान भी दे रखा है, आप हरगिज़ अपनी नज़रें इस चीज़ की तरफ ना दौड़ाएं जिससे हमने इनमें से कई किस्म के लोगों को फ़ायदा दे रखा है, ना इन पर आप अफसोस करें और मोमिनों के लिए अपने बाजू झुकाए रखें और कह दीजिए कि मैं खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ, जैसे कि हमने इन तकसीम करने वालों पर उतारा जिन्होंने इस किताब इलाही के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कसम है तेरे पालने वाले कि हम इन सब से जरूर सवाल जवाब करेंगे हर उस चीज का जो कुछ के वो करते थे, बस आप इस हुक्म को जो आपको किया जा रहा है खोल कर सुना दीजिए और मुशरिकों से मुंह फेर लीजिए। आपसे जो लोग मस्खरापन करते हैं इनकी सजा के लिए हम काफी हैं, जो अल्लाह के साथ दूसरे माबूद मुकर्रर करते हैं इनको अनकरीब मालूम हो जाएगा, हमें खूब इल्म है कि इन बातों से आपका दिल तंग होता है। आप अपने परवरदिगार की तस्बीह और हम बयान करते रहिए और सजदा करने वालों में शामिल हो जाएं और अपने रब की इबादत करते रहें यहाँ तक कि आपको मौत आ जाए। क्या पता चला असाबुल हिजर कौन थे? हजरत सालेह की कौम, कौम समूद थी, इन्हीं के दारुल हकूमत का नाम अल हिजर था, इसीलिए इस कौम को साबुल हिजर भी कहते हैं। पत्थरों के बिल्कुल दरमियान एक वादी थी, महफूज तरीन घर थे, और कहते हैं कि इनकी उम्रें बड़ी लंबी थी, 2-2, 3-300 साल की उम्र होती थी, तो ये जो मट्टी चूने के घर हैं ये तो उनकी ज़िंदगी में गिर जाते, तो अल्लाह ने इनके हाथों और इनके नाखनों में इतनी ताकत भर दी पत्थरों को ऐसे कार्व करके, जैसे उसके अंदर तराशना होता है, घर बनाते थे जो फिर कई सौ साल तक रहते थे। लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आई तो एक धमाके की आवाज़ ने इनके महफूज तरीन घरों को ख़त्म कर दिया। यहाँ रुकिए। आज की तरक्की पे मान करने वाले, जलजला प्रूफ इमारतें बनाने वाले, उनको भी अल्लाह की पकड़ से डरना चाहिए। स्काई स्क्रैबर्स बना लिए, एक अल्लाह की पकड़ आती है, पूरी पूरी बिल्डिंगें ज़मीन बोस होती हैं। तो क्या पता चला कि जब अल्लाह पकड़ लेता है तो फिर कोई भी उसको बचा नहीं सकता। फिर इस हिस्से का जो हिस्सा था फसफहिस सफ़ुल जमील, तो याद रखिए ये क्या होता है, ये फिर आज की औरत के लिए बड़ा लाजमी है। लोग तो होंगे, आपके साथ ज्यादती होगी, कभी कभी आपसे भी होती है, बल्कि मर्द औरत पे इतनी ज्यादती नहीं करता जितनी एक औरत पे ज्यादती करती है। असूल बना लीजिए फसफहिस सफ़ुल जमील, ओवरलुक कीजिए। बेटी घर में है, कोई बहुत बड़ी ख़राबी उसमें ना आ जाए तो हर वक्त रोक टोक ना करें। फिर एक दिन बैठकर अच्छी तरह समझा दें कि बेटा आपकी ये हरकत मुझे नहीं अच्छी लगती, आपके ये कपड़े मुझे नहीं पसंद, और आप ये जो इस तरह बोलती हैं ना ये पसंद नहीं, बस ख़त्म। हर वक्त जो रोक टोक टिक 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 बंदे को ढीठ बनाती है। सेम असूल बहू पर रखिए। उठते बैठते उसको ताना देने से नहीं उसको यकीन आएगा कि आप उसकी सास हैं, उसको पहले भी यकीन है कि आप सास हैं। बच्ची है, आपने तो खुद ही मांगी थी 16 साल की पतली दुबली अंधेरे में बिठाऊं रोशनी हो जाए, बिजली का बिल कम हो जाए। अब इतनी प्यारी खूबसूरत बच्ची आप लेकर आ गए घर में, अब आपका बेटा बेचारा उसी के इर्द गिर्द मंडलाता रहता है, आप कहती हैं बदल गया, इसने जादू कर दिया। दरगुजर कीजिए, उठ कर जाते हैं रात को, कहाँ जाएंगे, जोहराबा से बाहर जाएंगे भी किधर, पानी पियाएंगे, बोतल पियाएंगे, कहीं खाना खाएंगे, खाने दीजिए। आप हर बात में क्यों कुरेदती हैं, किधर गए थे, क्या खाया था, उधर क्या दिया है, मैके वालों को क्या दिया। कुछ सासों का तो ये क्रेज़ होता है, क्या देती है, उधर क्या दिया, उसको क्या दिया। कुछ शौहर भी बड़े बदनसीब होते हैं, औरत के अपने पैसे को उसकी मर्ज़ी से खर्च नहीं करने देते। तो फसफहिस सफ़ुल जमील, आप कर रहे हैं या कोई आप पे कर रहे हैं, दोनों का खूबसूरत। और ये क्या होता है, ऐसा खूबसूरत दरगुजर जिसमें सरजिंश और गम और गुस्से का इजहार ना हो। घरों का माहौल खूबसूरत रखिए, आपकी औरतें सेहतमंद रहेंगी। और कुछ मर्द तो घर आते ही तेवरी चढ़ा लेते हैं। किसी ने बताया कि उनके देवर की शादी उन्होंने अपने ख़ानदान में करा दी कि ये बड़ा स्माइली है, बहुत अच्छा जॉली है, चलो करा दी। लेकिन हुआ क्या, शादी के बाद जब वही जॉली मर्द घर आता है तो एकदम संजीदा गुस्से में। एक दिन कहती पूछ लिया, भाई ये तुझे क्या हो गया। कहने लगा अगर मैं ज़्यादा मजाक करूँगा तो ये मेरे से डरेगी नहीं, तो मैं रोब डालने के लिए गुस्से में रहता हूँ। तो मर्द इस तरह रोब क्या डालेगा, फ़ायदा क्या होगा। हमारे कल्चर में इस तरह की बड़ी बेहूदगियाँ हैं। इन बेकार बातों से कुछ नहीं होता। एक देहाती लड़की ने मुझे सुनाया कि हमारे कल्चर में ये बात मारूफ है कि शादी के मौके पर लड़की को कहते हैं जब जाओगी अपने कमरे में या घर में तो मियाँ से जाते ही पानी मांगना, फिर वो उठ के तुम्हारे लिए पानी लेके आएगा तो पीना, इससे फ़ायदा क्या होगा, सारी उम्र तुम्हारे लिए पानी भरेगा। चलो फसफहिस सफ़ुल जमील, तो याद रखिए इन चीज़ों से घर नहीं बसते। किरदार पुख्ता कीजिए, खिदमत कीजिए, इज्जत कीजिए, इज्जत दीजिए, इज्जत लीजिए। शौहर की इज्जत बीवी, बीवी की इज्जत शौहर, बहू की इज्जत सास, सास की इज्जत बहू, इज्जत के रिश्ते हैं। पीछे सूरह बकरा में पढ़ चुके हैं वल हुरुमात क़िसास, इज्जतें तो बराबरी। और हमारे यहाँ एक और भी औरत पे जुल्म है, और वो क्या है कि ये लड़की की माँ है और ये लड़के की माँ है। लड़के की माँ की बड़ी इज्जत है और लड़की की माँ की इज्जत नहीं। तो इस मुआशरे में जहाँ एक औरत को इतने मुख्तलिफ एंगल्स में हम परेशान करते हैं, याद रखिए फिर उस औरत के पास इतना दिमाग बचता ही नहीं है पढ़ने के लिए। कई खवातीन कहती हैं जब पढ़ने आए हैं ना अकल सारी ख़त्म हो चुकी है ससुराल के और घरदारियों के रिश्ते निभाते हुए, तो उलझे नहीं, गम गुस्सा ना करें, दी हुई अजियतों पर दिल छोटा ना करें। अल्लाह ताला आपके साथ बेहतरीन मामला करेगा। 19-20 चीज़ें आपको अगर अपने घर में दिखती भी हैं तो इग्नोर कीजिए। और याद रखिए अल्लाह के देखने का एहसास आपकी मेरी ज़िंदगी को बहुत मुतमईन कर देता है। क्या सीखा, बेखौफ ज़िंदगी नहीं गुजारनी। कुरान को एक अजीम नेमत समझना है और इसका इल्म हासिल करना है। कितने लोग कहते हैं रमज़ान के बाद भी इसका इल्म सीखना है, इंशाअल्लाह ताला। दुनिया की दौलत, मजबूत घर मेरे कुछ काम ना आएंगे, इनमें अपना आप नहीं खपा देना। मुहासबा करते हैं क्या सिर्फ अल्लाह के लिए सजदे करती हूँ, और अपनी ज़िंदगी के आखिरी घड़ी तक अल्लाह के बंदे बन के जीना है, और वो सब करना है जिसके करने का अल्लाह ने आपको मुझे हुक्म दिया। बहस हार जानी है किसी शख्स को हारने से बेहतर है। कहते हैं बेटर टू लूज़ एन आर्ग्यूमेंट दैन लूजिंग अ पर्सन। फसफल जमील और जो इस सारे का थीम चल रहा है उसके अंदर लिख लीजिए कि ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात में हक पे होते हुए भी आपको अगले की बात माननी पड़ती है। भोले बन जाइए, अल्लाह की मदद आपके साथ आएगी। आज जो आपका हक मरता हुआ दिख रहा है या आपके साथ ज़्यादती हो रही है, कल अल्लाह चाहेगा तो आपके लिए हालात बेहतर हो जाएंगे। तो ये थी सिंपल सी सूरत हिजर, मैंने तो सोचा था 15-20 मिनट में कर लेंगे, लेकिन इसमें आपके लिए बहुत कुछ था। अल्लाह आपको नसीब करे।